আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے مراقبہ. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ مراقبہ کسے کہتے ہیں اور مراقبے کے فوائد کیا ہیں اور مراقبہ کیوں کیا جاتا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد اور اس کا فائدہ ہوتا ہے جب بھی انسان وہ کرتا ہے. تو اگر اس کا کوئی مقصد نہیں تو ہم کیوں یہ کر رہے ہیں؟ مراقبے کے معنی ہے اپنے اعمال میں غور اور خوض کرنا. بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا, یہ مراقبہ. محاسبہ آپ سمجھتے ہیں نا, اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ تو اس کے ایک لفظی معنی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اپنے اعمال میں غور اور خوض کرے اور ان پر گہری نظر ڈالے اور حفاظت کے خیال سے نفس پر سخت نظر رکھے. اس لیے کہ اگر نفس کو چھوڑ دیا گیا تو وہ سرکش ہو جائے گا اور فساد اعمال کا باعث بنے گا. یہ وہ مراقبے کی تعریف احیاء العلوم میں فرماتے ہیں. راقب کے معنی ہے اطلاع رکھنے والا, علم رکھنے والا یا جاننے والا, اور اسی سے بنا ہے مراقبہ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ان اللہ کان علیکم رقیبا, بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب پر اطلاع رکھتا ہے. تم سب کی اطلاع اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے, یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس سے باخبر, خواہ وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو, چھپ کر کرو یا سامنے کرو, دن میں کرو یا رات میں کرو. واللہ خبیر بما تعملون, وہ تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو راقب کے معنی اطلاع کرنے والا, اور اسی سے بنا مراقبہ. اب اللہ تبارک و تعالی سب پر باخبر ہے, سب کے اعمال و افعال و کردار سے باخبر ہے. یہ ہم سب کا یقین ہے, ایمان ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ جان بھی رہا ہے, وہ سن بھی رہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس کی کیفیت تو یہ ہے, اس کی شان تو یہ ہے کہ جو ہم کرنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے. ابھی کیا نہیں ہے, جو ہم کرنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے, اتنا باخبر. اب اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے, اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھ لے وہ بھی باخبر ہو جاتا. بزرگان دین اولیاء کاملین, آپ دیکھتے ہیں نا, مراقبے میں سر جھکایا اور دیکھ لیا, باخبر ہو گئے, مطلع ہو گئے, ہر چیز کی خبر ہو گئی, جس چیز کو جاننا چاہا جان لیا. ہم دیکھیں تو آنکھیں کھول کر, اور اللہ کا ولی دیکھیں آنکھیں بند کر. عجیب کیفیت, ہم آنکھیں بند کر لیں دنیا اندھیر ہو جائے, کچھ نظر نہیں آئے, اور وہ دیکھتے ہی آنکھیں بند کر کے, کمال کی بات. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی, قلب کی آنکھیں کھلی ہوئی, باطنی نظر, باطنی آنکھ वो खुली हुई है, इस वजह से ये जाहिरी निगाह उनके सामने कोई हैसियत नहीं। और ये जाहिरी निगाह कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है, बातनी निगाह की कोई हद नहीं। बैठे यहां और देखे वहां, पूरी कायनात पे नजर। तो इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बिल यकीन अल्लाह तबारक व ताला तुम सब की इत्तला रखता है जो कुछ तुम कर रहे हो। अगर इस बात पर भी हमारा यकीन हो जाए तो हम कोई गलत काम ना करें। मिसाल के तौर पे देखिए, हमें इस बात पर ईमान है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें देख रहा, हम सबका ईमान है ना, हर मुसलमान का ईमान है, लेकिन यकीन नहीं, यकीन नहीं है। आप कहेंगे नहीं हमें यकीन है, अगर यकीन होता तो गलत काम क्यों करते। अगर यकीन होता कि वो देख रहा है तो चोर चोरी क्यों करता, डाकू डाका क्यों डालता, लोगों को क्यों लूटते, क्यों लोगों को अगवा करते और तावान लेकर फिर उनको छोड़ते। अगर यकीन होता कि अल्लाह देखता, लोगों को धोखा क्यों देते, गीबत क्यों करते, झूठ क्यों बोलते। यकीन नहीं ना, ईमान तो है कि देख रहा, यकीन नहीं। हदीसे जिब्राइल, यह हदीस शरीफ जो मैं बयान कर रहा हूं हदीसे जिब्राइल के नाम से मशहूर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन शमा के गिर्द परवानों की तरह हुजूर के गिर्द मौजूद। सहाबा कहते हैं हमने देखा कि एक शख्स आया जैसे कोई सफर करके दूर से आ रहा होता, और उस जमाने में गाड़ी के सफर तो थे नहीं कि यहां से बैठे वहां चले गए, घोड़ों पर ऊंटों पर खच्चरों पर सफर होते थे। जाहिर है घोड़ा चलता था, ऊंट वगैरह तो गर्दो गुबार उड़ता था चेहरे पर कपड़ों पर। तो जब कोई मुसाफिर आता था तो सफर के असरात उसके लिबास से उसके चेहरे से जाहिर हो जाते। आज तो आप शीशे चढ़ाकर बैठ जाए गाड़ी में, एसी खोल लें आराम से, साफ सुथरे कपड़े पहन के उतर गए, पता भी नहीं चला। और उस जमाने में घोड़ों पर सफर, गर्दो गुबार उड़ाए, मट्टी उड़ाइए कपड़ों पर। तो सहाबा कहते हैं वो आराबी जब आया तो आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने बैठ गया, और कैफियत क्या थी कि अपने घुटने उसने हुजूर अलैहिस्सलाम के जानू मुबारक से बिल्कुल मिला दिया और अपना हाथ हुजूर के जानू मुबारक पर रख दिया। हम देख रहे हैं ये कौन है, सफेद लिबास पहने हुए है, उसके चेहरे पर दाढ़ी पर गर्दो गुबार महसूस होता है, कहीं दूर से आ रहा। और आकर पूछता है मल ईमान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए ईमान क्या है। मल इस्लाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए इस्लाम क्या है। और तीसरा सवाल मल एहसान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए एहसान क्या है। और उलमा ने लिखा, मुफस्सरीन ने, कि ये तीसरा सवाल जो है यही तसव्वुफ के मुतालिक, मल एहसान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए एहसान क्या है। सरकार ने फरमाया एहसान ये है, अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, तो अल्लाह की इबादत इस तरह करके वो तुझे देख रहा। पहला दर्जा, अल्लाह की इबादत इस तरह कर के वो तुझे देख रहा है। फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यरा, अगर तेरी ये हालत नहीं कि तू खुदा को देखे तो कम से कम तेरी ये हालत होनी चाहिए कि वो खुदा मुझे देख रहा। पहले दर्जा क्या कि तू खुदा को देखे, अल्लाह की इबादत इस तरह कि तू खुदा को देख रहा। और अगर ये दर्जा हासिल नहीं, फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यरा, कम से कम ये हालत होनी चाहिए कि वो खुदा मुझे देख रहा। और हकीकत ये है अगर हम सबकी ये हालत हो जाए कि वो खुदा हमें देख रहा है, कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, कभी कोई गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों, खुदा देख रहा। एक मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि सबके सामने कोई आदमी भी गलत हरकत नहीं करता, कैसे से कैसा गुनाहगार हो, सियाकार हो, खताकार हो, सबके सामने नहीं करेगा। कोई बहुत ही बदबخت हो तो जो बिल्कुल सबके सामने ही कर ले, लेकिन ये कि इंसान अपने आप को बचाता है, छुप कर गुनाह करता है, छुप कर सारे काम करता है। क्यों, फला आदमी मुझे देख रहा, मेरा शेख मुझे देख रहा, मेरा उस्ताद मुझे देख रहा, नमाज पढ़ रहे देखा कि अगर पीर साहब देख रहे हैं तो बड़े आराम आराम से नमाज हो रही, तादील अरकान के साथ हो रही, लंबे लंबे कयाम कर रहे हैं, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सुजूद देख रहे हैं हजरत, देखें बड़े खुशू के साथ पढ़ रहा, और कोई नहीं देख रहा, तो बस मारा मत्थे जमीन के साथ उठाया, फिर मारा सलाम फेरा भागे, माजल्ला जैसे कोई बोझ उतार दिया। ये कैफियत है ना, जब सबके साथ पढ़ते हैं कितने इत्मीनान से, और अलग पढ़ते हैं जल्दी जल्दी पढ़ा और निमटा के भाग लो। एक चीज अगर जहन में रख ले कि जब कोई हमें नहीं देख रहा फिर भी एक देखने वाला है जो देख रहा, यह चीज अगर जहन में हो जाए, कोई नहीं देख रहा, आप बिल्कुल तन्हाई में है, न माँ है, न बाप है, न बीवी, न बच्चे, न उस्ताद, न पीर, कोई नहीं, दुनिया की कोई आंख आपको देख नहीं रही, उस वक्त भी सोचो एक देखने वाला है जो देख रहा। और अगर ये हाल हो जाए तो सारे मसले हल हो जाए, कभी कोई गलत काम इंसान नहीं कर सके। एक बुजुर्ग की खिदमत में मुरीदीन हाजिर हुए, एक नौजवान था, उसकी बड़ी इज्जत करते थे, बड़े एहतराम से उसको बिठाते थे। मुरीदीन इतराज करते, हजरत इसको आपने बड़ा सर पे चढ़ा रखा, जब ये आता है आप इसकी इज्जत करते, इसको पीछे से उठा के आगे बुला लेते, बड़ा एहतराम करते, क्या वजह है? कहा इसकी वजह है इसके दिल में खशियत इलाही है, डर खुदा का खौफ इसके दिल में रासिख है, आपने खामखाई इसको चढ़ा रखा है। ये इतने मुरीदीन है, किसी को आप इतना वो नहीं करते, इसकी इज्जत करते, आगे बुलाते, ये करते वो करते। कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। उन्होंने क्या किया, चार मुरीदों को बुलाया, उनमें से एक वो भी था, यानी तीन मुरीद और एक वो नौजवान, और चार कबूतर मंगाए और एक छुरी उनको दे दी चारों को, जाओ इस कबूतर को उस मकाम पर जिबा करो जहां खुदा न देख रहा हो, उस जगह इसको जिबा कर देना, पूरा दिन है तुम्हारे लिए, शाम को आ जाना। ठीक है, चले गए। एक गया गार के अंदर, उसने वहां जिबा किया, ले आए। दूसरा गया, उसने कमरे में बंद होकर जिबा किया, ले आए। तीसरा दफा और कहीं जंगल में गया, झाड़ियों में छुप कर जिबा किया, ले आए। और ये चौथा जो ये नौजवान था, ये कबूतर और छुरी साथ लेकर आए। एक को बुलाया, तुमने कहां जिबा किया? मैंने गार के अंदर। अच्छा, गार के अंदर खुदा नहीं देख रहा, ठीक है बैठ जा। दूसरे को बुलाया, तूने कहां जिबा किया? मैंने कमरे में छुप के अंदर बंद होके, वहां खुदा नहीं देख रहा, बैठ जा। तीसरे से पूछा, मैंने झाड़ियों में छुप कर किया, बिल्कुल अंधेरे में। अच्छा, वहां भी नहीं देख रहा। फिर उस नौजवान को बुलाया, तूने क्यों नहीं जिबा किया? कहा हुजूर आपने शर्ती ऐसी लगा दी थी कि मैं जिबा ही नहीं कर सका। क्या मतलब? आपने कहा था उस मकाम पर जिबा करो जहां खुदा ना देख रहा, मैंने दरियाओं की तह में देखा वहां भी खुदा देख रहा, मैंने गार के अंदर देखा वहां भी खुदा देख रहा, मैंने झाड़ियों में देखा वहां भी खुदा देख रहा, मैंने वीरानों में, रेगिस्तानों में, जंगलों में, सब जगह देखा, यहां तक के आसमानों पर, जमीनों पर, हर जगह नजर दौड़ाई, पूरी कायनात में एक जगह ऐसी नजर ना आई जहां खुदा ना देख रहा, हर जगह वो मुझे देख रहा था, इसलिए मैं वापस ले आया कि कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां खुदा ना देख रहा, मैं कैसे जिबा करूं? फरमाया सुनो, इसीलिए मैं इसकी इज्जत करता हूं, इसीलिए इसको देकर मुरीदीन पर तरजीह देता हूं, इसके दिल में खशियत इलाही रासिख है, खुदा का खौफ और डर। क्या मतलब? ये जितने ये तीन अफराद जो हैं, जो जिबा करके ले आए, अगर इनको मौका मिलेगा गुनाह हो जाएगा, गुनाह सरजद हो जाएगा कि खुदा नहीं देख रहा। लेकिन ये जो नौजवान है जो बगैर जिबा किए लिए आया, ये सात तालों में बंद हो जाएगा तब भी गुनाह नहीं करेगा, इसका यकीन है खुदा देख रहा, इसका यकीन है खुदा देख रहा। तो ये चीज है, अगर इंसान इस चीज को अपने दिल के अंदर रख ले, अपने कुलूब कल्ब और जहन के अंदर महफूज कर ले, खुदा मुझे देख रहा, कभी कोई गलत काम नहीं कर, सारा झगड़ा ही यही। और किसी से पूछो खुदा मौजूद है, कह रहे हाँ मौजूद है, खुदा हाजिर हो नाजिर है, हाँ हाजिर हो नाजिर है, खुदा देख रहा है, हाँ देख रहा है, फिर क्यों गलत काम कर रहे हो? धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, चुगली खा रहे हैं, कितने गुनाह कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ईमान तो है कि देख रहा है, यकीन नहीं। अगर यकीन हो जाए कभी गलत काम ना कर सके। यही तसव्वुफ की सीढ़ी है, यही बुजुर्गान दीन और यह कामिलीन ने बताया, हर वक्त अपने रब को अपने साथ समझो, हर वक्त अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ समझो, हर वक्त अपने पीर को अपने साथ समझो। पीर मुझे देख रहा, सरकार दो आलम अलैहि सल्लतु वसलाम देख रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा। अब देखिए, एक होता है हाल और एक होता है काल। हाल और काल इसमें फर्क है। काल, काल का मतलब बात, बातें। हम लोग बातें करते हैं ना, हम सब इसमें शामिल, हम साहिबे काल हैं, बातें ही बातें करते हैं। और ये बुजुर्गाने दीन साहिबे हाल हैं, वो उस कैफियत को अपने ऊपर जारी कर लेते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं अल्लाह देख रहा है, उनका यकीन होता है कि वाकई देख रहा। तो हम काल, काल वाले हैं, वो हाल वाले, वो साहिबे हाल हैं। तो जिसका यकीन हो जाए वो फिर साहिब हाल हो जाता। तो इमाम गजाली ने क्या फरमाया, नफ्स की मुखालफत, नफ्स को खुला मत छोड़ो, अगर खुला छोड़ दोगे सरकशी इख्तियार करेगा, फसादे आमान का बाइस बन जाएगा। उस पर कड़ी नजर रखो, गौर खौस करो, और इसी गौर और खौस करने का नाम मुराकबा है। मुराकबा, हम ये समझते हैं कि जो मुराकबा आमतौर पे होता है शायद यही मुराकबा है, नहीं। मुराकबे का असल माना अपने आमाल में गौर और खौस करना, यानी अपने आप को देखना, और यही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है, अपने आप पर गौर करना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरों को देखना बहुत आसान है, दूसरों पर तनकीद करना बहुत आसान है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अरे फला आदमी ये करता है, वो झूठ बोलता है, वो गीबत करता है, अरे पूरे जहान को देखने वालों अपने आप को देखो, तुम क्या कर रहे हो। दूसरों को देखना बड़ा आसान है, उन पे तनकीद करना बड़ा आसान है, उनको नसीहत करना बड़ा आसान है, अपने आप पर तनकीद करना, अपने आप को नसीहत करना, ये बड़ा मुश्किल काम। यही काम किया है बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन, तब जाके वो मकामात पर पहुंचे। अपना मुहासबा किया, अपने नफ्स की इसलाह की, और जब नफ्स की इसलाह हो गई फिर दूसरों की इसलाह की। अब आप कहेंगे कि हम कैसे करें, अपनी इसलाह कैसे करें। देखिए, इंसान कई तरीके से सीखता है। एक तो सीखने का तरीका है तालीम। किसी इदारे में आप दाखिल हुए, मसलन स्कूल की तालीम आपने मुकम्मल की तो कॉलेज में, कॉलेज की मुकम्मल हुई तो यूनिवर्सिटी में, या किसी दारुल उलूम में, किसी मदरसे में, किसी भी इदारे में। एक तो जरिया यह है इल्म हासिल करने का, सीखने का, वहां आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, एक तरीका यह है। अब एक आदमी है, उसको तालीम हासिल करने का मौका ही नहीं मिला, ना उसने स्कूल में पढ़ा, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, ना किसी दारुल उलूम में, वो क्या करे। दूसरा जरिया है मुताला, किताबों से, किताबें पढ़े इल्म हासिल हो जाए। और तीसरा जरिया है सोहबत, नेक लोगों की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत में बैठ जाओ, उसमें भी हासिल हो जाए। और ये तीसरा जरिया इतना ऑथेंटिक है कि ये तुम्हारी जाहिर की भी इसलाह कर देगा, बातिन की भी इसलाह कर देगा, तुम्हारे जाहिर को भी पाक कर देगा और कल्ब को भी पाक कर देगा। ये तीसरा जरिया है सीखने का। और इंसान अगर सीखना चाहे तो सबसे सीख सकता है। क्यों? हर इंसान के अंदर खूबी और खामी मौजूद है, एक फैक्ट है, एक हकीकत है। कोई इंसान ऐसा नहीं वो कहे मेरे अंदर कोई खामी नहीं, खामी जरूर है, और ऐसा नहीं कि कोई खूबी नहीं, खूबी भी मौजूद। हम किताबें पढ़ते हैं ना, इंसानों को पढ़ो, बहुत नाजुक बात कह रहा हूं, इंसानों को पढ़ो, और इंसानों से सीखो। आप कहेंगे कैसे सीखे? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आपने अदब कहां से सीखा? फरमाया बेअदबों से। कैसी बात है? बेअदबों से। हाँ बेअदबों से। कैसे? कहा मैं उनके अंदर जो जो चीज देखता गया अपने अंदर से कम करता गया, मैं बादअब बन गया। कैसी बात है? जो जो चीज मैं उनके अंदर देखता गया, ये गलत है ये छोड़ दो, ये गलत है ये छोड़ दो, ये गलत है ये छोड़ दो, मैं बादअब बन गया। अरे सीखने वाला हो तो बेअदबों से भी सीख सकता है, और ना सीखने वाला हो तो महफिल में बैठ के चला जाए तब भी नहीं सीख सकता। इसलिए हर इंसान के अंदर खूबी और खामी मौजूद है। खामियों को मत देखो, खूबी को देखो और वो ले लो। हर इंसान की खूबी ले लो, और अगर खामी देखो कि इसके अंदर ये खामी है उसको बयान मत करो, अपने आप को देखो कि इसके अंदर जो खामी है मेरे अंदर तो नहीं, अगर मेरे अंदर है हटा दो। ये कसरत से झूठ बोलता है ऐसे तो नहीं कि मैं भी बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं आज से तौबा कर लो नहीं बोलो। ये लोगों को धोखा दे रहा है, मैं जानता हूं धोखेबाज है। अपने गिरेबान में देखो, मैं कहीं मैं तो धोखा नहीं दे रहा, अगर मैं दे रहा हूं तो मैं तौबा कर लूं कि आइंदा नहीं करूं। सीखना चाहे तो सबसे सीख सकता, और ना सीखने वाला तो किसी से भी नहीं सीख। इसलिए अहले तरीकत पर यह लाजिम है कि वो अपने आमालो अफालो किरदार को बेहतर बनाए। बुजुर्गान दीन के हालात पढ़ें, उनसे सीखें, उनका हर अमल हमारे लिए मशाल राह, और अपना मुहासबा करें। अब आप कहेंगे मुहासबा कैसे करें? फिर वही बात कि अपने आप को तलकीन करना बड़ा मुश्किल है, अपने आप को नसीहत करना बड़ा मुश्किल है, अपनी इसलाह करना बड़ा मुश्किल। उसका एक बेहतरीन तरीका है, पहले भी हम कुछ नशिस्तों में बता चुके हैं लेकिन हम इसको दोबारा रिपीट कर दें। रात को जब आप सोने के लिए लेटें, पूरे दिन का जायजा ले लें। रोजाना सोने के लिए लेटते हैं ना, सुबह में फजर के वक्त उठा उस वक्त से शुरू करें। सुबह मैंने क्या किया? जब आप ये गौर करेंगे सुबह उठा तो वहीं से पता चल जाएगा कि उठे भी या नहीं उठे, पता चल जाएगा ना। अगर मैं पूछ लूं तो सारे कहेंगे जी हम तो उठे थे, है ना, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं, इसलिए कि पर्दापोशी रखनी चाहिए। खुद आप सोचें सुबह में जब उठा तो क्या हुआ, मैं किस वक्त उठा? अगर 9 बजे उठे, सोच लो मुझे किस वक्त उठना चाहिए था। मौज़िन तो फजर के वक्त कह रहा था हय्याल फलाह, फलाह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ, और कामयाबी लेने वाले सो रहे। दफ्तर की ड्यूटी का इतना ख्याल के पहले से तैयार, और खालिक और मालिक की ड्यूटी सो रहे। लेकिन वो मौला भी कितना करीम है, कितना रहीम है। अगर वो ये ड्यूटी लगा देता कि जो फजर पड़ेगा रिजक मिलेगा, और नहीं पड़ेगा तो नहीं मिलेगा, क्या होता? सारी मस्जिदें भरी हुई होती, कोई मस्जिद खाली होती? नमाज पढ़ लो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा नमाज पढ़ लो। लेकिन उसकी शान क्या है, जो पढ़ रहा है उसे भी दे रहा है, नहीं पढ़ रहा उसे भी दे रहा है। उसकी शान करेंगी, रिजक का वादा किया है, वो अपने वादे पर कायम है। हम अपने वादे से फिर गए, हम क्या वादा करके आए थे? तू मेरा रब है, उससे वादा करके आए ना, तेरी इताअत फरमाबरदारी करेंगे, और यहां आकर भूल गए। उसने रिजक का वादा किया, दे रहा। अदना से अदना मखलूक, एक कीड़ा है, एक मामूली कीड़ा, उसको भी रिजक दे रहा, और एक हाथी है उसे भी रिजक दे रहा। 18,000 आलम उसने पैदा किए, और उनमें तमाम मखलूकात हैं, सबको पाल रहा। आप ये मत समझें कि ये जमीन पर ही मखलूक है, जमीन के अंदर भी मखलूक है, पानी के अंदर भी मखलूक है, फिजा में भी मखलूक है, आसमानों भी मखलूक है। कितने आलम उसने पैदा किए, सारी मखलूकात को पाल रहा, इसलिए कि रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है, तमाम आलम को पाल रहा। तो अगर वो ये ड्यूटी लगा देता सारे के सारे उठ जाते। फिर आप कहेंगे तो फिर फायदा ही क्या, जो नमाज पढ़ रहा है उसको भी मिल रहा है, जो नहीं पढ़ रहा उसको भी मिल रहा है, तो क्या फायदा नमाज पढ़ने का? फर्क क्या हुआ? फर्क ये है जो नहीं पढ़ रहा उसको तो मिल रहा है, और जो पढ़ रहा है उसे भी मिल रहा है। जो पढ़ रहा है उसमें बरकतें शामिल कर दी, और जो नहीं पढ़ रहा बरकतें छीन ली। रिजक दोनों को मिल रहा, फजर पढ़ने वाले को भी, फजर न पढ़ने वाले को भी, लेकिन नहीं पढ़ रहा उसमें बरकतें छीन ली, रिजक मिल रहा। हजारों कमालों, महीना पूरा होने से पहले खत्म, परेशान है, बीमारी में निकल गया, हादसात में निकल गया, परेशानी में निकल गया, और जो पाबंदी के साथ पढ़ रहा है उसमें खुदा अपनी रहमतें बरकतें शामिल कर दें। अगर एक रुपया भी कमाएगा उसी में सुकून है, उसी में आफियत है, उसी में अमन है, उसी में सलामती, ये फर्क होगा। तो कहां से शुरू करें? हम अपना मुहासबा फजर से शुरू करें। हम सुबह कितने बजे उठे, अगर ये देखें कि आज हम लेट हो गए, तो कोशिश करें कल से हम फजर के वक्त उठेंगे। और इंसान अगर चाहे सब कुछ कर सकता। कुरान कहता है लैस लिल इंसान इल्ला मा सहा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए कोशिश करे। कोशिश करेगा मिलेगा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैं अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस में मैंने कितना काम किया? कहीं ऐसे तो नहीं कि ऑफिस में मैंने बेकार वक्त गुजारा, जो काम मेरा था वो पूरा नहीं किया, बातों में वक्त गुजार दिया और काम को कल पे टाल दिया, ये भी खयानत है। याद रखिए, खयानत सिर्फ ये नहीं है कि कोई अमानत आपके पास रखवाए और आप उसको ना दें, ये खयानत है। अपना काम दयानतदारी से ना करना ये भी खयानत है। ये आप अपने रिस्क हलाल को हराम कर रहे हैं। अगर मालिक आपको नहीं देख रहा तो उससे बचकर काम चोरी कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं, काम खराब कर रहे हैं, ये भी गलत है। जो काम आपके जिम्मे है उसे पूरा कीजिए, मालिक देख रहा हो या ना देख रहा हो उसे पूरा करना लाजिम है। यह है अमानत। जिस काम का आप पैसा ले रहे हैं उसको पूरी दयानतदारी के साथ करें, तब अदल होगा, इंसाफ होगा और अमानत में खयानत नहीं होगी। उसके बाद दोपहर को मैंने जोहर पढ़ी या नहीं पढ़ी, किस वक्त मैंने खाना खाया, कितने लोगों से मिला, इसमें कितनी दफा झूठ बोला, कितनी दफा किसको धोखा दिया, किसकी गीबत की, सारे आमाल का मुहासबा। फिर असर पड़ी या नहीं पड़ी, मगरिब पड़ी नहीं पड़ी, ईशा पड़ी नहीं पड़ी, सारी नमाजों का देख ले। जब आप पूरे दिन का मुहासबा करेंगे कि अब मैं जो बिस्तर पे लेटा हूं फजर से लेकर अब तक मैंने क्या किया, ये पूरे दिन का मंजर एक फिल्म की तरह आपके सामने घूम जाएगा। जैसे फिल्म चलती है ना, पूरी फिल्म आपके सामने घूम जाए, पता चल जाए क्या किया, और खुद अपने आमाल पर शर्मिंदा हो जाओ। अब उसमें गौर कर लो, अगर आज का दिन ऐसे गुजरा कि मैंने सिर्फ एक नमाज पढ़ी, कल से इंशाल्लाह मैं पूरी पांच नमाजें पढ़ूं। अगर आज का दिन ऐसे गुजरा कि मैंने झूठ बोला है, कल से मैं तौबा करता हूं कि झूठ नहीं बोली। इस तरह अपनी इसलाह करते रहिए। हम इस तरह अपनी इसलाह कर सकते हैं, किसी को जरूरत नहीं कहने की। रोजाना जब बिस्तर पर जाइए, फजर से लेकर इशा तक, बल्कि बिस्तर पर लेटने तक पूरा अपना मुहासबा कर लीजिए, सारी फिल्म आपके सामने चल जाएगी। एक एक चीज को खत्म करते जाइए, खत्म करते जाइए, मोमिन मुसलमान बन जाए। ये है अपनी इसलाह का तरीका। और अपनी ख्वाहिशात और अपनी तमन्नाओं को सही समत लगा दीजिए। एक चीज है तमन्ना, एक चीज है उम्मीद, रिजा, इसको कहते हैं अरबी में रिजा, रिजा के माना उम्मीद। उम्मीद और तमन्ना में फर्क है। सूफिया ने कहा कि उम्मीद ये मुस्तहसन है और तमन्ना जो है मजमूम है। तमन्ना तो आदमी बहुत करता है, तमन्ना के माना ख्वाहिश, और आप जानते हैं कि इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। कभी होती है पूरी? नहीं होती। अगर कहीं जॉब कर रहा है तो मुझे ओहदा बड़ा मिल जाए, ये मिल गया तो और इससे ऊपर, ये मिल गया तो और इससे ऊपर, कम नहीं हुई ना कनात? नहीं कि मौला जो मिल गया यही काफी है, नहीं और ऊपर, एक मकान है तो दो, एक गाड़ी है तो दो, बढ़ते चले जाए ख्वाहिशात तमन्नाएं। और तमन्ना में एक काम यह है कि इंसान तमन्ना में कोशिश नहीं करता जबकि उम्मीद में कोशिश करता, और उम्मीद करता ही उस वक्त है जब वो अमल कर चुका हो। बात समझ रहे हैं? तमन्ना और उम्मीद, तमन्ना के माने ख्वाहिश, ख्वाहिशात तो आदमी बैठे बैठे कर दे। मेरी ख्वाहिश है कि यहां पर एसी लग जाए, लग जाएगा बैठे बैठे? नहीं, वैसे मेरे ख्वाहिश नहीं है, मैं वैसे ही कर रहा हूं। या कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे एक बहुत बड़ा मकान मिल जाए डिफेंस में, सारी ख्वाहिशात है ना, करता रहेगा। ये मजमूम है, इसको सूफिया ने गलत करार दिया कि तमन्ना करोगी तो बढ़ती रहेंगी ख्वाहिशात, कभी कम नहीं होंगी। हाँ, उम्मीद, रिजा, रिजा जिसे कहते हैं अरबी में, ये जायज है। और उम्मीद आदमी करता है अमल के बाद, अमल के बाद उम्मीद करता है, पहले नहीं करता। इम्तिहान दे दिया, उम्मीद है कि पास हो जाऊंगा, बाद में है ना। इम्तिहान नहीं दिया, उम्मीद है पास हो जाऊंगा, कैसे हो जाएगा? इम्तिहान तो दे पहले। अमल से पहले उम्मीद नहीं, उम्मीद होती ही अमल के बाद। नमाज पढ़ ली, उम्मीद है रब कबूल कर लेगा। नेक अमल कर लिए, उम्मीद है मौला कबूल कर लेगा। उम्मीद है ना, सबको नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ सबको होनी चाहिए ना। तो नेक आमाल करो और उम्मीद रखो कि मौला इसको कबूल कर ले, कबूल कर ले। ख्वाहिशात मत करो, तमन्नाएं मत करो, उम्मीद, पहले अमल करो और फिर उम्मीद करो। और उम्मीद भी अल्लाह की जात से, जब उसकी जात से उम्मीद करोगे, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से मायूस मत होना, जो मुझसे जैसी उम्मीद रखता है मैं वैसा अमल उसके साथ करता हूं। वो मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है, मैं चार कदम बढ़ता हूं। वो चल कर आता है, मैं दौड़ कर पहुंच जाता हूं। ये अल्लाह की शान, उससे उम्मीद। और उससे ऐसी उम्मीद और इस तरह ताल्लुक कि फिर जैसा उसके साथ ताल्लुक वैसा किसी के साथ ताल्लुक। और हकीकत हाल भी यही है कि बंदे का जैसा रब के साथ ताल्लुक है, जो होना चाहिए अगर हकीकत में हो जाए तो दुनियावी ताल्लुक खत्म हो जाए, फिर वो उसी ताल्लुक में खो जाए, गुम हो जाए। बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन ने दुनिया को छोड़ दिया, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समरानी सल्तनत को लात मार दी, इख्तदार था, इख्तियार था, हर हुक्म पर काम हो रहे थे, छोड़ दिया। क्यों? रब से वासिल हो गए, रब से ताल्लुक कायम हो गया, दुनिया को छोड़ दिया। एक वजीर ने, एक बादशाह का वजीर था, तो उस पर, अब जाहिर है वजीर एक वजारत, एक ओहदा है, मनसब है, बादशाह के करीब है। अचानक दिल में खशियत इलाही पैदा हुई, खुदा का खौफ, डर, दुनिया से बेरगबती पैदा हो गई। वजारत से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया और निकल गया अल्लाह की राह में। काफी अरसे के बाद जब बादशाह के पास आया तो बादशाह ने पूछा कि तुझे क्या हो गया? मेरा वजीर था, मैं तुझे अच्छी तनख्वाह देता था, सब कुछ था, आराम आसाई, अब किसके पास चला गया तू? किसकी मुलाजमत इख्तियार कर ली, किसकी नौकरी इख्तियार कर ली? तो उसने जो जवाब दिया वो सुनने और याद रखने के काबिल। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपका वजीर था और काफी अरसे मैं आपकी खिदमत में रहा। आपके अंदर पांच खसलतें थी, पांच। अब मैं जिसके पास गया हूं उसमें यही बेहतरीन खसलतें, बल्कि इससे भी ज्यादा। अच्छा, कहां पर चले गए तू? मैं बादशाह, मेरी मुलाजमत छोड़कर मुझसे बढ़कर कौन है? वो तो यही सोच रहा था किसी दुनियावी बादशाह के पास चला गया। उसने कहा, पहले मैं आपका गुलाम था, आप खुद खाते थे, मुझे नहीं खिलाते थे, अब मैं उसका गुलाम हूं जो खुद नहीं खाता मुझे खिलाता। ये पहली खसलत, आप खुद खाते थे मुझे नहीं खिलाते थे, कभी पूछा कि आ जाओ तुम भी आके खा लो? नहीं, खुद खा रहे बैठे, मैं देख रहा हूं, हाथ बांधे खड़ा। अब मैं उस शहनशाह के पास हूं जो खुद नहीं खाता वो मुझे खिलाता। अच्छा, दूसरी खसलत ये थी, मैं सारा दिन हाथ बांध के आपके सामने खड़ा रहता, कभी आपने नहीं कहा कि बैठ जा। अब मैं उस आका का गुलाम हूं कि अगर मैं उसकी बारगाह में उसकी बंदगी के लिए 4 रकात पढ़ता हूं, 2 दफा हुक्म होता है बैठ जा, हुक्म होता है बैठ जा ताकि इबादत में तुझे परेशानी ना हो, थक ना जाए, वो इतना करीम है मेरा मर्द। अच्छा वाकई, हाँ। दूसरी बात यह कि आप में तीसरी खसलत यह थी कि आप सारी रात सोते थे, मैं आपकी हिफाजत करता था, और अब मैं जिसकी बारगाह में गया हूं मैं सोता हूं वो मेरी हिफाजत करता, वो सोता ही नहीं है, उसकी शान तो यह है ला ताखुज़ु हुस्नतुन वला नौम, उसे ना नींद आती है ना ऊंग, सोना जागना तो बंदों के लिए है, रब को नींद नहीं आती, वो सोता ही नहीं। एक हिंदी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, हमारे वालिद मोहतरम अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ जिलानी कभी जिक्र फरमाते थे तो बड़े प्यारे अंदाज में वो शेर पढ़ते थे कि हिंदी शायर ने हिंदी में कहा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, उठ तू रब से ध्यान लगा, ये कीत करन की रीत भई, रब जागत है तू सोवत है। कहते ये कैसी मोहब्बत है, रब तो जाग रहा है तू सो रहा है, ये रब से मोहब्बत है तेरी? अरे रब से मोहब्बत है तो तुझे भी जागना चाहिए, उठ रात को गर्म बिस्तरों को छोड़ दे और उसकी मोहब्बत में खड़ा हो जा, तब पता चलेगा कि तू सही मोहब्बत करने वाला। ये कीत करन की रीत भई, रब जागत है तू सोवत है, रब तो जाग रहा है और तू सो रहा, इसीलिए बुजुर्गान दिन सोते नहीं, रब जागता है तो वो भी जागते हैं, और जब दुनिया वाले सोते हैं तो तब ये जागते हैं और रब से राज़ो नियाज करते हैं। ये कैफियत। तो कितनी चीजें हुई, 3। तू रात को सोता था, मैं तेरी हिफाजत करता था, जागता था, खड़ा रहता था, अब मैं जिसका मुलाजिम हूं, जिसकी खिदमत में हूं, मेरा आका नहीं सोता, मैं सोता हूं, वो मेरी हिफाजत करता। 4थी खसलत ये है कि तू तो मर जाएगा, जाहिर है मौत तो आनी, तू ऐसा मेरा आका है कि तुझे मौत आनी है, मर जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन अब मैं जिसका गुलाम हूं उसे मौत ही नहीं है, वो तो जिंदा ही जिंदा, वो कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, शुरू से है, आखिर तक रहेगा, अजल से है और अब तक रहेगा, ये उसकी शान। और 5वीं खसलत ये है तेरे अंदर कि मुझसे कोई गलती होती थी मैं डरता था कि अब मुझ पर इताब होगा, ये बादशाह नाराज होगा, मुझ पर जुल्म करेगा, सजा देगा, पता नहीं माफ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अब मैं जिसका गुलाम हूं वो ऐसा रहीम व करीम है, खता होती है जब मैं सजदे में सर रखता हूं वो माफ कर देता। उसकी शान यह है कि माफ कर देगा, माफ कर देता है। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो और तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले। ये उसकी शान है, वो तुमसे इतनी मोहब्बत रखता है कि जितनी तुम्हारी माँ तुमसे मोहब्बत रखती है उससे बढ़कर वो तुमसे मोहब्बत रखती है। वो क्यों तुम्हें अजाब देगा, उससे रहमत की उम्मीद रखो, मगफिरत की उम्मीद रखो, और जैसी उम्मीद रखोगे उम्मीद को जाया नहीं करेगा, रहमतें नाजिल फरमा दे, बख्श देगा। तो ये 5 खसलतें, अब मैं उस आका की बारगाह में हूं कि मुझे आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है, मुझे रिजक भी मिल रहा है, मेरी हिफाजत भी हो रही है, मेरी तौबा भी कबूल हो रही है, मैं सारी उम्मीदें उससे वापस्ता किए हुए हूं और वो सारी उम्मीदों को पूरा भी कर रहा। इस तरह अगर इंसान रहे तो फिर आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह का अमल उसके साथ, उस बंदे के साथ करता। शर्त यह है कि उसका यकीन कामिल होना चाहिए, यकीन कामिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ होगा या नहीं होगा फिर नहीं होगा, اور اگر یقین ہے کہ ہوگا تو پھر سمجھو یقیناً ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ بندہ جیسا مستحکم یقین اس کے ساتھ رکھے ویسا معاملہ کرتا. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا جلیل القدر نیک متقی پرہیزگار خاتون ہوئی اپنے زمانے کی. اللہ کی راہ میں ایک روٹی دے دی, ایک روٹی پکائی, سائل آ گئے اٹھا کے دے دی. ہم سے کوئی مانگے گا یار یہ ایک ہی تو ہے تجھے دے دوں گا تو میں کیا کھاؤں, دے دی اٹھا کے اللہ کی راہ میں. لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے تھی. کہاں اس نے وعدہ کیا ایک کے ستر دے گا اسی لیے تو دیے. دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, رابعہ بصری موجود ہیں؟ کہاں موجود ہیں, یہ روٹیاں لے کر آئے ہوں, کسی نے بھیجی ہیں آپ کی خدمت میں. فرمایا ٹھہر جا ٹھہر جا, ابھی جانا نہیں, گنی, ستر نہیں ہے, واپس لے جا. کیوں, میرے رب نے تو ستر کا وعدہ کیا ہے, کسی اور کے لیے آئے میرے پاس؟ اتنا یقین کامل اللہ کی ذات پر, اس نے تو ایک کے ستر کا وعدہ کیا ہے, یہ کم لے کر آیا ہے, میرا حصہ نہیں ہے, میرے رب نے نہیں بھیجا. کچھ دیر کے بعد دیکھا تو اتنی ہی روٹیاں تھیں جتنی امید آپ نے رکھی. کہا یہ ہے میرے رب کا انعام, جب اس نے کہا ہے میری راہ میں ایک دو ہم ستر گنا دیں گے تو ہم کم کیوں لیں گے اسے, وہ تو دے گا ستر گنا. بلکہ وہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ چاہے تو اس میں اور اضافہ کر دے. یہ تو اس کی شان ہے. تو ان کا یقین کامل تو ایسا تھا, بزرگان دین اور یہ کاملین, بلکہ ان کی بات تو بہت دور ہے. ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی وصال مبارک کو 52 سال ہوئے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا, رابعہ بصری کو تو کافی عرصہ ہو چکا. والد گرامی فرماتے ہیں دہلی میں, یعنی پارٹیشن سے پہلے کا واقعہ, دوپہر کا وقت ہوتا ہے. اب دیکھتے عام طور پہ گھر کی عورتیں پیسے مانگتی ہیں کہ بھائی پیسے دے دیں, سودا منگا لیں, کھانا کیا پکا لیں, ہوتا ہے نا اکثر, سارے گھر والے بیٹھے سب کو پتا ہو آج کیا پکے گا کیا نہیں پکے گا, گوشت لے آؤ فلاں چیز لے آؤ. تو ہماری دادی صاحبہ نے پوچھا کہ آج کیا پکے گا, فرمایا آج کچھ نہیں پکے گا. ارے بھوکے رہیں گے کہ بس آج اللہ بھیجے گا تو کھائیں گے, نہیں بھیجے گا تو نہیں کھائیں گے. کہہ دیا اور پھر سمجھی کہ ہو سکتا ہے مذاق کر رہے. اس کے بعد اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے, وظائف میں. ایک گھنٹہ گزرا, دو گھنٹے گزرے, انہوں نے دیکھا دوپہر کا وقت قریب آ رہا ہے, بچے کھانا مانگیں گے اور آپ کے لیے بھی کھانا چاہیے. پھر آ کر کہاں, بھائی تم سے کہہ دے دیا اللہ بھیجے گا تو کھائیں گے, نہیں بھیجے گا تو نہیں کھائیں گے. آج ہم نے اس سے کہہ دیا اگر تو بھیجے گا تو کھاؤں گا ورنہ کھاؤں گا ہی نہیں, آج نہیں پکے گا کھانا. اچھا دوپہر کا وقت ہو گیا, ظہر کا وقت ہو گیا, نماز ہو گئی, گھر والے بھوکے بیٹھے, نہ گھر میں کچھ پکا نہ باہر سے آیا. اور اللہ کے ولی کو اتنا یقین ہے کہ آرام سے سکون کے ساتھ عبادت میں لگے ہوئے. اور جب ان کے کھانے کا ٹائم ہوا, ظہر کے بعد کھانا تناول فرماتے, وظائف پورے کرتے تھے, مریضوں کو دیکھتے, اس کے بعد اطمینان سے سکون سے کھانا تناول فرماتا. جب ٹائم ہوا اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی, کسی نے دیا, اچھا انہوں نے لے لیا, دیکھا تو اس میں بریانی تھی اور وہ اس کے اندر گھی کافی مقدار میں. برتن خالی کیے, دروازے پر دینے کے لیے گئیں تو کوئی نہیں, کوئی موجود ہی نہیں. پھر آ کر کہا کہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں ہے. کہا جس نے بھیجا ہے اس کو برتن کی ضرورت نہیں ہے, کس کو دینے جا رہی ہے, رکھ لو. حیران ہے یہ کیا وجہ, فرماتے جب سب نے کھایا تو اتنی بہترین بریانی کہ اس سے پہلے کھائی نہیں کرتی اور نہ اس کے بعد کھائی. اور اس میں سے جو گھی نچوڑ کر رکھا تھا اتنا تھا کہ کئی دن وہی کھانے میں استعمال ہوا. اب پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آیا, کس نے بھیجا, لانے والے نے بتایا بھی نہیں کہ کہاں سے آیا ہے, اور نہ وہ برتن لے کر گیا. کہا جس سے کہا تھا اس نے بھیج دیا, हमने कहा था तू खिलाएगा तो खाएंगे, नहीं खिलाएगा तो नहीं खाएंगे, इतना यकीन था। रब ने यकीन को पूरा कर दिया, भेज दिया। ये है बुजुर्गान दीन की शान कि जब वो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे बन जाते हैं, उस मकामे महबूबियत पर फाइज हो जाते हैं, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना करम उन पर फरमाता, फिर वो जो चाहते हैं वही वो करता। और याद रखिए, एक होता है महबूब और एक होता है मुहिब। मुहिब के माना मोहब्बत करने वाला, और महबूब जिससे मोहब्बत की जाए, ठीक है ना। मुहिब और महबूब दोनों में फर्क है। मुहिब का काम क्या है, महबूब जो कहे वो करे, यही काम है ना भाई। जैसा महबूब चाहेगा वही करे। वो कहते यहां खड़ा हो जाओ, हाथ बांध के खड़ा रहे, क्यों, उसको मोहब्बत, जिससे मोहब्बत होगी उसके हर काम करने के लिए तैयार, हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार। मुहिब का काम तो यही है। हजरत महबूब इलाही सुल्तान निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खिदमत में पहुंचे। उन्होंने पूछा, निजामुद्दीन महबूब बनोगे या मुहिब, बताओ क्या बनोगे। खामोश, क्या जवाब दूं। कहा, हुजूर कल जवाब दूंगा, कल बताऊंगा। ठीक है जाओ, चले गए। वहां से निकले, चलते 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 जब अपने घर के करीब आने लगे तो रास्ते में दुकान पर एक फकीर बैठा हुआ। उसने कहा, निजामुद्दीन कल क्या जवाब दोगे, सोच भी लिया नहीं, बताओ। अभी बताया नहीं उनको, ये अल्लाह वालों की शान है। देखते ही पहचान लिया, कहा कल क्या जवाब दोगे। कहा, मैंने तो ये कहा है कि कल जवाब दूंगा। हाँ यही तो पूछ रहा हूं, कल क्या जवाब दोगे। कहा, मैं घर जा रहा हूं, वालदा से पूछूंगा या आप बता दें। कहा, मैं भी कल जवाब दूंगा। अच्छा, चले गए। घर पहुंचे, वालदा की दस बोसी की। आज अजीब वाकया हुआ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुझसे सवाल किया है कि मोहिब बनोगे या महबूब। बेटा तुमने क्या जवाब दिया। मैंने कहा कल जवाब दूंगा। और जब मैं आने लगा तो दुकान पे एक फकीर बैठा था, उसने वहीं से आवाज दी, बाबा निजामुद्दीन क्या जवाब दोगे। तो मैंने उससे पूछा, आप ही बता दें। उसने कहा, मैं भी कल बताऊंगा। और मैंने उससे यह भी कह दिया कि वालदा से पूछूंगा। अच्छा, कहा मैं भी कल जवाब दूंगा। सब कल पे मामला टल गया, सो गए। बेचारी में रात गुजारी, सुबह हुई, फजर की नमाज अदा की, अब जाना है खिदमत में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की। वालदा को सलाम किया, दस बोसी की, मैं जा रहा हूं, हुक्म फरमाइए। आपने कहा था कल जवाब दूंगी। कहा, जो जवाब फकीर दे वही जवाब तुम दे देना, उसी फकीर के पास जाओ जो रास्ते में तुम्हें दुकान पे बैठा हुआ मिले। सुल्तान निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह चले वहां से। दुकान पर पहुंचे तो फकीर गायब। अरे ये कहां चले गए, मैंने तो कहा था कल जवाब दूंगा, ये तो गायब। दुकान वाले से पूछा, भाई वो जो फकीर यहां बैठा था, एक बुजुर्ग कल तुम्हारी दुकान पे, उन्होंने कहा उनका तो इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा, लो काम ही हो गया, अब मैं क्या जवाब दूं। वालदा ने तो कह दिया जो फकीर जवाब दे, फकीर का इंतकाल हो गया। भाई इंतकाल हो गया तो है कहां, कहां तदफीन हुई। कहा, तदफीन वदफीन नहीं हुई, वो ये जो थे लोग उसको घसीटते हुए ले गए, वो तो ऐसे ही था फकीर, ऐसे ही मामूली आदमी था। तुम उसको बहुत बड़ा बुजुर्ग समझ रहे हो, वो तो ऐसे ही था, गंदे लिबास में था, ऐसे ही था। कहा, अच्छा बताओ उनकी लाश कहां पर है, कहां तदफीन हुई। कहा, कोई तदफीन नहीं हुई, लोग उसको घसीटते हुए ले गए, वहां गड़े में डाल दिया। अच्छा मुझे बताओ कहां है। उन्होंने बताया फलन जगह। चले गए महबूब इलाही, वहां पहुंचे, देखा कि लाश पड़ी हुई, जिस्म पे कीचड़ भी पड़ी हुई, पानी भी पड़ा हुआ, मट्टी। कहा, हुजूर आपने तो ये कहा था कि कल जवाब देंगे, अब मैं आया तो आप रवाना हो गई, अब मैं क्या जवाब दूं। उन्होंने फौरन कलमा पढ़ा और उठकर बैठ गई, आंखें खोल दी। कहा, निजामुद्दीन हम मोहिब बने थे, ये हाल हुआ है। मोहिब बने थे, ये हाल हुआ। देखो गलियों में घसीटा गया, यहां नाके फेंक दिया गया, न गोर न कफन। तुम महबूब बन जाओ, बड़े नाज़ उठाए जाएंगे। बड़े नाद उठा जाएंगे, महबूब बन जाओ, ये कहा और फिर कलमा पढ़ा, इंतकाल, रूह परवास कर गई, फिर लेट गए। इन्होंने कहा ठीक है। वहां पर आकर कहा हुजूर महबूब बनना चाहता हूं, फरमाया जाओ तुम्हें महबूब इलाही बना दिया, कयामत तक महबूब इलाही मशहूर। कयामत तक महबूब इलाही मशहूर है, नाज उठाए जा रहे, आज तक नाज उठाए जा रहे, लंगर आज भी चल रहा है, कयामत तक चलता रहे। क्यों? अल्लाह के महबूब हैं, जो कह देंगे वो सुन लेगा, जिसके लिए दुआ कर देंगे वो कबूल कर लेगा, जिसकी सिफारिश कर देंगे वो कबूल कर लेगा। महबूब हैं, महबूब ने किया है ना, मान लो। तो ये महबूबों का सिलसिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम महबूबों वाले हैं। मर्दूदों से तो हमारा रब्ता ही नहीं, हम तो महबूबों के साथ हैं। महबूबे सुबहानी, महबूबे यजदानी, महबूबे रब्बानी और महबूबे इलाही। सलासिले तसव्वुफ में, तरीकत में चार महबूब गुजरे, चार महबूबे सुबहानी, गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी, उनके बाद महबूबे इलाही सुल्तान निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रहमतुल्लाह, कितने हो गए? दो। महबूबे यजदानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, और महबूबे रब्बानी आना हजरत सैयद शाह अली हुसैन अशरफी अल जिलानी, हम शबीए गौसुल आजम। तो ये सारे महबूब तो हमारे पास हैं, तो हमें मर्दूदों के पास जाने की जरूरत क्या? हम तो हैं ही महबूबों वाले, और महबूबों की शान ये है कि जहां कदम रख दें वहां रहमतें नाजिल हो जाएं, जहां पर बैठ जाएं वहां रहमतें नाजिल हो जाएं, जहां पर जिक्र हो जाए वहां रहमतें नाजिल हो, इसलिए कि उसके महबूब हैं, जिसके लिए हाथ उठा दे उसकी सिफारिश कबूल कर ली जाए। तो ये चार महबूब आपके सिलसिले में हैं, और ये चारों महबूब के दामन से हम वाबस्ता हैं, इन चारों का दामन हमारे हाथ में, और ये चार महबूब जब आपको मिल जाएंगे तो फिर पहुंच जाओगे महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे और उसके रसूल हैं। तो बात कहां से चली कि अपना मुहासबा अगर इंसान करे तब इस मकाम पर पहुंच सकता, और मुहासबे का तरीका हमने आपको बता दिया कि जब रात को बिस्तर पर लेटे सुबह से शाम तक अपने पूरी जो जिंदगी एक दिन की, एक दिन में जो कुछ किया है उस पर एक नजर डाले, और जब उस पर नजर डाल देंगे जो जो बातें आप ऐसी देखें वो सब निकाल दें, और इसमें एक फायदा और होगा, और वो फायदा ये है कि आपको ये पता चलेगा कि आज पूरे दिन में मैंने कितना वक्त जाया किया। ये भी है, हम वक्त जाया कर देते फजूल बातों में, बैठने में, उठने में, खाना खाने में, बहुत सी चीजों फजूल टाइम जाया कर देते, और अगर उसको गौर करें तो पता चल जाए अच्छा इतना टाइम हमने जाया किया, कल हम नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे। अगर आप अपना पूरा हिसाब लगाएं कि आप जो जो वजाइफ पढ़ते हैं उसमें कितनी देर लगती है, हिसाब लगा लिया एक घंटा, पांच नमाजें पढ़ी उसमें कितनी देर लगी, जिक्र अजकार किया उसमें कितनी देर लगी, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए वहां कितनी देर लगी, शॉपिंग के लिए गए वहां कितनी देर लगी, फजूल जगह टाइम जाया कर दिया कितनी देर लगी। अब उसका मुवाजना कीजिए, ये टाइम उस टाइम से ज्यादा है या कम है? अगर इबादत का टाइम उस फजूल टाइम से कम है तो आप खसारे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, और अगर इबादत का टाइम उस फजूल टाइम से ज्यादा है तो समझ लो अब आप फायदे में। यही फर्क है हम में इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन में, उन्होंने अपने वक्त को मैनेज किया, 24 घंटे हमारे पास और 24 घंटे गौसे आजम के पास भी, उन्होंने अपनी टाइम को ऐसे मैनेज किया कि दिन रात खुदा के लिए और दिन मखलूक खुदा के लिए, इस तरह अपनी जिंदगी। उनका तो सोना जागना इबादत था, रात को जागते थे इसलिए कि खुदा की इबादत करें, और दिन में सोते इसलिए थे कि रात को जागना है, दिन को इसलिए सोते थे कि रात को जागना है, और रात को इसलिए जागते थे कि इबादत करनी है। तो सोना भी इबादत हो गया, जागना भी इबादत, पूरी जिंदगी इबादत हो गई। तो ये शान इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की। तो आज आपने ये समझा कि मुराकबा किसे कहते हैं। अब मैं आखिर में आपको ये भी बता दूं कि उर्फ आम में जो मुराकबा कहा जाता है, यानी आम तौर पे जैसे हम बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के मज़ारात पर जो मुराकबा करते हैं, उसका तरीका भी हम आपको बता दें कि 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और कोई भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 11 मरतबा सूरह अलम नशरा पूरी मुकम्मल, इसके बाद एक मरतबा सूरह फातिहा, और इसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। समझ गए ना, 11 दफा दुरूद शरीफ, 11 मरतबा सूरह अलम नशरा, एक मरतबा सूरह फातिहा, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये तरतीब है। उसके बाद आंखें बंद करके अपने कल्ब पे इसमें अल्लाह लिखा हुआ तसव्वुर करते हुए मज़ार के मवाजे की तरफ बैठें। मवाजे कहते हैं जहाँ साहिब मज़ार का चेहरा हो, तो चेहरा हमेशा किबले की जानिब होता है, तो आप किबले की तरफ पीठ करके बैठें ताकि उनका चेहरा आपके चेहरे के सामने, और फिर आंख बंद करके बैठ जाएं और अपने दिल पे अल्लाह 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 ये पढ़ते रहें दिल ही दिल में, और अपने शेख का तसव्वुर करें, अपने शेख का तसव्वुर करें। जब शेख का तसव्वुर कायम हो जाएगा तो शेख अपना तसव्वुर हटाकर साहिब मज़ार की ज़ियारत करें। यह है मुराकबा, पहले शेख का तसव्वुर कायम हो, जब वो तसव्वुर कायम हो गया और मुराकबा और आगे बढ़ेगा तो फिर शेख अपना तसव्वुर हटाकर साहिब मज़ार की ज़ियारत करें। ये है, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा कि आप अभी जाके बैठे हो फौरन हो गया। हाँ, इंसान जो है ना, वो कुरान कहते हैं ना, वकानल इंसान अजूला, इंसान बहुत जल्दबाज है, हर काम जल्दी हो जाए। मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊं, एक दिन में वली अल्लाह बन जाऊं, ऐसे नहीं होता। इबादत और रियाजत, तकवा परहेजगारी और मुजाहिदा, तब जाके मुकाशफा। जब तक मुजाहिदा नहीं होगा, मखदूम समनानी फरमाते मुशाहिदा नहीं होगा, पहले मुजाहिदा करो तब मुशाहिदा होगा। हम बगैर मुजाहिदे के मुशाहिदा करना चाहते हैं, अभी जाके बैठे साहिब मज़ार की ज़ियारत हो जाए, हो जाएगी नहीं। दिल में तो गुनाहों की गिलाजत भरी हुई है, फिर कहां से नजर आएगा। दिल के आईने में तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तो तस्वीर यार तो है, लेकिन देखोगे कैसे, जब तक साफ नहीं होगा नजर कैसे आएगा। आईने पे गर्द गुबार हो तो अपनी शक्ल नजर नहीं आती, यार के जलवे कैसे नजर आएंगे। तो इसलिए जरूरत है कि हम अपने आप को झूठ से, गीबत से, चुगली से, इन तमाम चीज़ों से पाक साफ करें। जो जो गलतियां हमारे अंदर हैं, जो जो चीज़ें हमारे अंदर हैं बुराइयां, आहिस्ता आहिस्ता उनको दूर करते रहें, मुहासबा करते रहें अपना। जब हमारा मुहासबा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, कल्ब आईने की तरह रोशन हो जाएगा, मुराकबा हो जाए। और फिर कैफियत ये होती है जब आदमी किसी मकाम पर पहुंच जाता है कि जरूरत नहीं कि मज़ार के पास ही बैठे तब ज़ियारत हो, जहां बैठकर गर्दन झुका ली वहीं ज़ियारत हो जाएगी, फिर मकाम ये है। लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है और बड़ी कोशिश की ज़रूरत है। आखिर में बस एक बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ। ये माह मुबारक रजबुल मुरज्जब शरीफ का मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। 27वीं शब शबे मेराज बड़ी मुकद्दस बाबरकत रात है। इस रात में 1000 मरतबा अस्तगफार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैह, 1000 मरतबा। और इसके अलावा अगर नवाफिल 100 हो जाएं तो बहुत बेहतर है, वरना कम से कम 40 नफिल ज़रूर पढ़ें, और दुरूद शरीफ की तो कसरत करें जितनी भी आप पढ़ सकते हैं, और आखिर रात में सरकार की बारगाह में पेश कर दें। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक अजीम शान मुइज़े की रात है, सरकार को एक अजीम शान एजाज उस रात में मिला, अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, हम उनके ग़ुलाम हैं, आका की खुशी में हम भी खुश हैं। मकाम मिला तो हम क्यों ना खुश हों। तो इस खुशी में ये नजराना हुजूर की बारगाह में पेश कर दें, उनकी एक निगाह करम हो जाएगी, दुनिया भी संवर जाएगी, आक़िबत भी संवर। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्ज़दार हैं उन्हें बारह कर्ज़े से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनका फरमा बरदार बना। ऐ रब्बुल आलमीन, ये तमाम हजरात और ख़वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए यहाँ हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में अमल में उम्र में बरकत अता फरमा, इन सब के रोज़गार में तरक्की अता फरमा, इन सब की ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। इन्नल्लाहु मलाइकतहु सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।